हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 329। नैना के पिता वहां पर और किसी को नहीं जानते थे, इसलिए सीधा आकर नैना से पूछताछ करने लगे। तब नैना ने थोड़े गुस्से में कहा, क्या, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की यहाँ पर। जब वो ठीक थी तब तो कभी आप लोगों ने उसकी कोई सुध नहीं ली। वो तो उसका नसीब अच्छा था कि उसे आदित्य जैसा इतना अच्छा इंसान और प्यार करने वाला पति मिला। नहीं तो आप जैसे घरवालों के साथ रह कर तो क्या कुछ नहीं झेला हम दोनों ने। और फिर अब आप लोग यहाँ पर अच्छे बनने का नाटक करने आए हैं। प्लीज, ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती। इसलिए अच्छा होगा आप लोग जैसे यहाँ पर आए हैं वैसे ही चुपचाप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप लोगों के यहाँ होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैना को जो लोग सच में प्यार करते हैं वो पहले ही यहाँ पर हैं। नैना के मन में अपने पिता और घरवालों के लिए जितनी भी नफरत और गुस्सा भरा हुआ था वो सब उसने अपने पापा के सवाल के जवाब में निकाला। लेकिन उसके पापा ने एकदम अनजान और अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन तुम ये क्या बोल रही हो बेटा, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो और हमें तुम्हारी फिक्र है। नैना ने गुस्से में अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधते हुए कहा, अच्छा तो आज अचानक से ये आपको याद आया, लेकिन मैं बता दूं कि आपके इस दिखावे की हमें जरूरत नहीं है। अपनी बात बोलकर नैना ने उनकी तरफ से नजरें फेर लीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर विवान आगे आया और उसे समझाते हुए बोला, नैना तुम ये अपने पापा से कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारी नाराजगी जिस भी बात पर हो, लेकिन ऐसे मौके पर, यहाँ हॉस्पिटल में और सुनैना वहाँ जिंदगी और मौत के बीच है, ऐसे में तुम इस तरह से बात? विवान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और नैना ने उसे बीच में ही रोते हुए बोला, नहीं विवान, रहने दो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो इनके बारे में। इस बार उसकी सौतेली माँ ने आगे आते हुए बहुत ही प्यार से कहा, नैना बेटा तुम ये क्या बोल रही हो, हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम हमें ही क्यों ये सब कुछ सुना रही हो? नैना ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, आप तो चुप ही रहिए, आप तो बस अरुण की माँ बन जाइए, वही बहुत है। हम दोनों की तो कभी कुछ भी नहीं बन सकती आप, और आप दोनों से मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर नैना खुद ही वहाँ से दूर चली गई और वो लोग अरुण के साथ वहाँ पर ही खड़े रहे, एकदम हैरान और कन्फ्यूज चेहरे के साथ। तभी अरुण ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो पहले ही मना कर रहा था आप दोनों से कि मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं माने, तो अब सुनिए। अरुण के पिता ने एकदम सदमे से कहा, अरुण बेटा तुम ये कैसे बात कर रहे हो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। अरुण ने बहुत ही लापरवाही से कहा, हाँ हाँ याद है मुझे, और मैं अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए प्लीज, जैसा कि नैना दी ने कहा, ये हॉस्पिटल है और इस तरह के तमाशे के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है, तो प्लीज आप दोनों वापस चले जाएं, वही अच्छा होगा। अरुण और नैना की ऐसी जलीकटी बातें सुनकर कहीं ना कहीं नैना के पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ कुछ भी गलत किया है। और दूसरी तरफ अरुण की माँ तो पहले ही सुनैना और नैना की सौतेली माँ है, उन्होंने कभी भी उन दोनों को अपनी बेटियों की तरह नहीं माना, तो फिर उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मुंह बनाते हुए नाक भौहें सिकोड़ी और गुस्से से अरुण की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ गईं। उनके पति भी चुपचाप सिर झुकाते हुए उसके साथ ही वहां से चले गए। आदित्य के सामने ही वो सारा ड्रामा हुआ, लेकिन आदित्य और स्वीटी दोनों ने ही कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो दोनों सुनैना के परिवार वालों के बारे में जानते थे। सुनैना कई बार इस बारे में उन्हें बता चुकी है कि उसका उसके परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आदित्य और स्वीटी भी उनके बीच कुछ नहीं बोले। स्वीटी ने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि एक तो वो उम्र में सबसे छोटी है और दूसरा ये उनका फैमिली मैटर है। विवान ने भी नैना को इतना समझाने के बाद कुछ और कोशिश नहीं की और अब तक वो लोग वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद नैना वहाँ पर वापस आई और उसने देखा स्वीटी और अरुण आपस में कुछ बात कर रहे थे। उन्हें बातें करते देख नैना उस तरफ ही बढ़ गई। उसे देखते ही अरुण बोला, नैना दी अगर आप मुझे बता देती तो शायद मैं कुछ मदद कर पाता। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? नैना ने कन्फ्यूजन से पूछा। तो अरुण ने उसे उस दिन वाली पूरी बात बता दी। इस पर नैना ने कहा कि सुनैना ने ही मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो और तुम पर कोई खतरा आए। स्वीटी भी उन दोनों की बातें सुन रही थी और उसने कहा, हाँ अरुण, ये कोई शिकायतें करने का वक्त नहीं है। फिलहाल बस यही सोचो कि किसी तरह से भाभी ठीक हो जाएं। उसकी बात सुनकर अरुण ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और आगे कोई भी सवाल जवाब नहीं किए और वहाँ पर साइड में जाकर बैठ गया। वो आदित्य से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन आदित्य उसकी भी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसी तरह चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। वो सारे लोग ही सुनैना के लिए काफी घंटों तक वहाँ पर हॉस्पिटल में ही रुके रहे, लेकिन जब रात ज्यादा होने लगी तो नैना ने विवान को वहाँ से जाने के लिए कहा। विवान, आई थिंक तुम्हें अब घर वापस चले जाना चाहिए, काफी टाइम से तुम यहाँ पर मेरे साथ हो। इसके बाद नैना ने स्वीटी और अरुण की तरफ देखते हुए कहा, अरुण तुम भी घर वापस जाओ और स्वीटी तुम विवान के साथ ही चली जाना। नैना ने उन सबको वहाँ से जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि रात में पेशेंट के साथ सिर्फ दो लोग ही वहाँ पर रुक सकते हैं और आदित्य के अलावा नैना खुद वहाँ पर रुकना चाहती है। विवान काफी देर से नैना को नोटिस कर रहा था कि उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए उसने कहा, नैना तुम घर चली जाओ और कुछ देर रेस्ट कर लेना, तब तक मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। इस पर नैना बोली, नहीं विवान, मैं अगर घर चली भी जाऊंगी तो भी मुझे चैन नहीं आएगा और ना ही नींद, मुझे हर वक्त बस सुनैना की फिक्र ही लगी रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहूंगी और उसे देखती रहूंगी तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा, इसलिए प्लीज मुझे घर वापस जाने को मत बोलो और यहाँ आदित्य जीजू भी हैं और उसे भी अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, तुम्हें वो इतना जानते नहीं है इसलिए तुम्हारे साथ कम्फर्टेबल भी नहीं हो पाएंगे। नैना की बातें सुनकर विवान ने कुछ नहीं बोला और हल्का सा सिर्फ हाँ में हिलाते हुए उसने अरुण और स्वीटी की तरफ देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। विवान की ये बात सुनकर नैना ने कहा, थैंक यू सो मच विवान, वैसे स्वीटी को अपने साथ ले जाना और अरुण को उसके घर के रास्ते तक छोड़ देना। अरुण तुम वहाँ से चले जाओगे ना? अरुण ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने जाते वक्त नैना से कहा, दी सुनैना दी को कुछ भी नहीं होगा और आप प्लीज हिम्मत रखिए और जीजू के साथ ही रहना दी। स्वीटी ने भी वहाँ से जाने से पहले कहा, हाँ मैं भी जा रही हूँ आपके बोलने पर, क्योंकि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा पूरा ध्यान भी भाभी में ही लगा रहेगा, इसलिए जैसे ही भाभी को होश आ जाए आप प्लीज मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना, मैं तुरंत ही उनसे मिलने आऊंगी। उन दोनों की बात सुनकर नैना ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को ही इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन जाओ अभी, तुम दोनों घर जाकर रेस्ट कर लो, कब से तुम लोग भी यहाँ पर ही हो।
नैना की बात मानते हुए वो दोनों ही विवान के साथ वहाँ से निकल गए। अरुण विवान के साथ चला तो गया, लेकिन रास्ते में स्वीटी और विवान को बात करते देख वो स्वीटी को लेकर काफी पोजेसिव और प्रोटेक्टिव बिहेव कर रहा था। स्वीटी आगे बैठने वाली थी, लेकिन उसने स्वीटी को अपने साथ पीछे बैठने के लिए कहा। उसके ऐसे बर्ताव से स्वीटी ने भी ये बात नोटिस की, लेकिन विवान के सामने उसने कुछ नहीं कहा और अरुण के साथ कार की बैक सीट पर बैठ गई। और कुछ देर के बाद जब विवान का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था, तब उसने अरुण के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी अरुण, ये सब मेरी सेफ्टी के लिए है। उसकी ये बात सुनकर अरुण एकदम ही सकपकाते हुए बोला, अरे नहीं, ये मुझे क्यों बता रही हो तुम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। स्वीटी ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, बस ऐसे ही, मुझे लगा मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम ये जानना चाहते होगे। उसकी इस बात पर अरुण ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और कुछ भी नहीं बोला। कुछ देर के बाद मेन रोड नजर आते ही उसने विवान से कार रोकने के लिए कहा और वहाँ पर ही उतरने का डिसीजन लिया और वो वहीं पर उतर गया। उसके बाद विवान स्वीटी के साथ अक्षत के बंगले की तरफ चला गया, क्योंकि फिलहाल वो भी वहाँ पर ही रुका हुआ है। कुछ देर बाद अक्षत का बंगला विवान और स्वीटी की कार से जैसे ही अक्षत के बंगले में पहुँचे, अक्षत उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। उन दोनों के अंदर आते ही उसने तुरंत ही मेड से दरवाजा बंद करने को कहा और उन लोगों से सुनैना के बारे में पूछने लगा। स्वीटी ने उसकी बात का जवाब देते हुए बता दिया कि सुनैना अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है, जबकि उसे अंडर ऑब्जर्वेशन 8 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। उसके बाद अक्षत ने विवान की तरफ देखते हुए नैना के बारे में पूछा तो विवान बोला, अरे बहुत बुरे हाल हैं उनके, रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, और वो उसका हस्बैंड, वो तो जैसे किसी सदमे में चला गया हो, अजीब पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। विवान की ये बात सुनकर अक्षत ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं विवान, वो सच में अभी सदमे में होगा, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा था, किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आई एम सॉरी भाई, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा था, लेकिन बस जो देखा और आपने जो पूछा वही बता रहा था, वो सच में ऐसी अजीब बातें कर रहा था, मैंने तो कभी किसी को किसी के लिए ऐसा करते नहीं देखा, वो सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। विवान की ये बात सुनकर अक्षत बोला, हाँ आदित्य और सुनैना दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और सिर्फ ये वही इंसान समझ सकता है कि अपने प्यार को इस हालत में देखकर कैसा लगता है और दिल में कितना दर्द महसूस होता है। ये बात बोलते बोलते अक्षत को कि वो दिन याद आ गया जब नैना को उस सन की पागल डायरेक्टर ने किडनैप कर लिया था और उस वक्त उसने भी नैना को ऐसी हालत में देखा था तो उसे बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए कहीं न कहीं वो आदित्य की तकलीफ समझ पा रहा है क्रमशः।